सूत गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी निमग्न होकर कथा सुनाने वाले, तो कहते हैं विष्णु राते न संपृष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदय ब्रवित, निमग्न हृदय से वो कहे सुनाते हैं। और वो कहते हैं कि इस सुखदेव गोस्वामी कहना शुरू करते हैं और भागवत में ये श्लोक आता है कि कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्षेतु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक सखा था जिसका नाम था सुदामा, और वह बहुत ही ज्ञानी था, ब्राह्मण था और ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता था, और वह विरक्त था, इंद्रियार्थेषु उसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके रखा था, प्रशांत आत्मा प्रशांत मन था उसका, और जितेंद्रिय अपने सारी इंद्रियों पे उसने कंट्रोल करके रखा था। तो बताते हैं कि वो ब्राह्मण था, और शास्त्र बताते हैं कि ब्राह्मण का क्या मतलब होता है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि कोई ब्राह्मण से पैदा हुआ है तो ब्राह्मण माना जाएगा उसको, ऐसा नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इफ बर्थ इज द क्राइटेरिया टू कंसिडर समबडी ए ब्राह्मण, देन वेन ए ब्राह्मणी डिलीवर्स, यू नो वेन शी गिव्स ए बर्थ अलॉन्ग विद द चाइल्ड मैनी वायरसेस मैनी वर्म्स आर ऑल्सो बॉर्न, देन दे शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ब्राह्मणास एंड वी शुड एक्चुअली वर्शिप देम, बट दैट्स नॉट द क्राइटेरिया। सो भगवान गीता में बताते हैं गुण कर्म विभागश, सो द क्राइटेरिया इज द क्वालिटी एंड द एक्टिविटी। एंड शास्त्र कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र, एवरी वन बाय बर्थ इन द कलियुगा इज शूद्र, संस्कारात द्विज उच्यते, एंड वेन संस्कारास आर डन देर आर मेनी संस्कारास, यू नो लाइक गर्भदान संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, मेनी संस्कारास। वेद पठेत वेद पाठात भवेत विप्र, एंड वेन ही स्टार्ट्स रीडिंग द वेदास देन ही बिकम्स ए विप्र एंड ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण होता है। तो बोलते हैं सखा है, और सखा का क्या मतलब होता है, एक स मतलब होता है साथ में, और खा मतलब जो खाता हो, तो जो अपने साथ में बैठ के कोई खाता है उसको सखा कहते हैं। तो बताते हैं कि भगवान की मित्रता के बारे में सुहृदम सर्वभूतानाम दीन बंधु पतित पावन, ये जो है भगवान उसके बारे में बताते हैं। तो क्या बोले कि मित्र तो बहुत होते हैं इस दुनिया में, और बहुत लोग मित्र बना लेते हैं, लेकिन मित्रता निभाना नहीं जानते। मित्रता निभाई कैसे जाती है वह बहुत डिफिकल्ट है, और इसीलिए इस दुनिया में जो मित्रता होती है, इस दुनिया की मित्रता ऐसी कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, तो यही ज्यादातर होता है। लेकिन भगवान की मित्रता बहुत अद्भुत है। यहां पर दो कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटी है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक भगवान श्री कृष्ण है और एक सुदामा है। दोनों एक आप ऐसा कह सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो राजा है, और सुदामा कौन है, सुदामा भिक्षुक है, एकदम भिकारी है, राजा और भिकारी। या ऐसा कह सकते हैं कि चलो दोनों सम्राट है, दोनों राजा है, एक राजा है अमीरी का और एक राजा है गरीबी का, महागरीबी का। तो सुदामा का जो इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है, हम जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मतलब भगवान ने जो ये मित्रता की है और जो निभाई है ये एकदम चरम सीमा पे है, इससे खाली हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और भगवान इस मित्रता से एक संदेश हमको ये देना चाहते हैं कि देखो मैं मित्र बनने के लिए रेडी हूं, आप मुझसे मित्रता करो। और भगवान को बहुत पसंद है, तो भगवान तो इंडीड कहते हैं कि मुझे जैसे भगवान कृष्ण ने बात कहते हैं कि सो सुख नहीं ब्रह्म स्तुति में ऐसी मीठी ब्रज की गारी, कि जो ब्रह्म स्तुति में मुझे आनंद नहीं आता है वो मेरे मित्रों से गाली खा के मुझे आनंद आता है। जब मुझे गोपियां कहती है ओरे नंद के, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। जब कोई मुझे यू नो राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट नो द्वारकाधीश या इस तरह से अगर कोई पुकारते हैं तो कहते हैं कि माता मोर पुत्र भावे करे ना बंधन अति हीन ज्ञान करे लालन पालन, कि माता जानती नहीं है कि मैं कौन हूं, कौन है भगवान, ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। लेकिन उस सर्व कारण कारणम को यू नो जब माता यशोदा जब डांटती है हाँ, जब उसको बांध देती है तो भगवान को बहुत आनंद आता है। जब राधा रानी कृष्ण को गाली देती है हाँ, या फिर गोपियां जब उनको डांटती है, तो कृष्ण को उसमें बहुत ज्यादा आनंद आता है, जो आनंद जय जगदीश हरे में नहीं आता। ऐसा भगवान स्वयं बताते हैं कि जब कोई मेरी 10,000 आरती उतारता है और मुझे ऑ एंड रेवरेंस के अंदर जब करता है, उसमें इतना प्रेम मुझे नहीं मिलता है जितना प्रेम मुझे, तो बोलते हैं कि मेरे सखागण जो है, कई बार जब मैं खेल खेलने जाता हूँ, डाव खेलने जाता हूँ हाँ, तो चीटिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो वो लोग मुझे डांट देते हैं हाँ, वो मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण घोड़ा बन और हमको लेके चल हाँ। तो सखा सुध्य सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुमी कौन बड़ा लोक तुमी आमी साम। तो बोले तू कौन सा राजा का बेटा है, हमारे साथ खेलना है तो ऐसे ही खेलना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान को बहुत आनंद आता है। तो कहते हैं कि ये जो सुदामा था, ये जो प्रशांत आत्मा बहुत भगवान का अच्छा सखा था, तो ऑब्वियसली इसकी पीछे स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा, वो स्टोरी आप सब जानते हैं इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस तरह से दोनों जन संदीपुनी मानी के आश्रम में पढ़ते थे, आपको वो स्टोरी पता है। और तो बेसिकली भगवान लगभग 11-11.5 साल वृंदावन में रहे, उसके बाद मथुरा आए, कंस का वध किया, देवकी वसुदेव को छुड़ाया और अपने माता पिता के साथ में रहने लगे। तो देवकी वसुदेव ने सोचा कि 11 साल तक इसने मटरगस्ती की है, स्कूल तो गया नहीं, वहां तो स्कूल नहीं जाता, गाय चराते थे भगवान, तो बंसी बजाते थे, खेलते थे, तो स्कूल गए नहीं थे, तो स्कूल तो बोले इनको स्कूल में भर्ती करना पड़ेगा। तब उनको उज्जैनी में संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा गया और वहां पे उनके सुदामा से मुलाकात हुई और दोनों साथ साथ में कृष्ण बलराम के साथ में सुदामा अपना एजुकेशन ले रहे थे वहां पर। तो यहाँ पर एक और चीज है, हरे कृष्ण अंकल इनको जरा बैठने के लिए जगह दीजिए। इधर बैठ जाओ ना, आई थिंक इट्स बिकॉज मेरा फोकस फिर उधर करने में मेरे को डिफिकल्ट होगा, इट्स बेटर। तो एनीवे, क्योंकि मैं जैसे बोला था आपको स्टोरी पता है इसलिए डिटेल में उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बता जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर सुदामा और उसकी पत्नी, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो कहते हैं कि सुदामा जो था वो अयाचक प्रवृत्ति का था, अकिंचन अलग है, अयाचक है मतलब जो मांगता नहीं है। एक होता है याचक होता है जो जाके भीख मांगता है, सुदामा नहीं मांगता था, जो अपने आप आ गया वो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। तो अयाचक प्रवृत्ति का था, इसलिए बहुत गरीब था, बहुत कुछ उसको मिलता नहीं था और बहुत एकदम दरिद्र की तरह उसका जीवन था। और शादी हो गई थी, सुशीला उसकी पत्नी का नाम था और दो चार बच्चे भी थे उसके, तो बहुत कठिनाई से अपना गुजारा वो करता था। और कई बार ऐसा होता था कि घर में खाने के लिए अन्न नहीं होता था, क्योंकि मांगने तो जाता नहीं था, कभी नहीं आया, तो भूख के मारे बच्चों को नींद नहीं आती थी। तो सुदामा अभी एक्चुअली हम लोग शायद इमेजिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम वो स्थिति में से निकले नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति उस स्थिति में से निकला है मे भी वो समझ सकता है कि शुदा क्या होती है, यू नो द पैंग्स ऑफ हंगर इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट। तो कई बार ऐसा होता था कि उसकी बीबी चूल्हे पे बर्तन रखती थी, उसमें पानी गर्म रखती थी, लेकिन डालने के लिए चावल नहीं होते थे, तो खाली डंडे से हिलाती थी और बच्चों को कहती थी कि बस थोड़ी देर में बन जाएगा, थोड़ी देर में बन जाएगा, और वो कहते थे कि मैया भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, और कई बार ऐसा बोलते बोलते ही उनको नींद आ जाती थी और सो जाते थे। और कभी कभी सुदामा उनको अपनी गोदी में ले लेते थे और कृष्ण कथा सुनाते थे कि देख मेरा सखा, यू नो उसने ये किया, उसने इस तरह से पूतना को मारा, इसने इस तरह से बकासुर को मारा, तृणाव्रत को मारा। और ऐसा कृष्ण की एक्चुअली ऐसे बताते हैं कि कभी कभी कृष्ण की कथा अगर आप बहुत ही ध्यान से उसको सुनो और इस तरह से सुनो कि बस केवल मुझे यही चाहिए, तो वही आपको पोषण दे देगा। इसलिए 7 दिन 7 रात तक परीक्षित राजा ने कुछ खाया पिया नहीं था, ना एक दाना अन्न का खाया था, ना एक घूट पानी पिया था, ना एक झपकी ली थी। और उस समय उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को कहा था कि तत् अच्युत पीयूषम, कि आप ये जो अच्युत की कथा मुझे सुना रहे हैं, ये जो पीकर मेरा नरिशमेंट हो रहा है, तो आप कृपया शॉर्टकट में मत सुनाओ, ये मत सोचो कि बेचारा राजा भूखा है, यू नो कुछ खाया पिया नहीं है। मुझे इसमें तृप्ति मिल रही है। तो कई बार वो कृष्ण कथा सुन के बच्चे का पेट भर जाता था और वो सो जाते थे, लेकिन ऐसा बहुत बार चलते रहा। और एक बार ऐसा सिचुएशन आया कि कुछ खाने के लिए कुछ नहीं था, दो दिन चार दिन हो गए और सुशीला से रहा नहीं गया। हालांकि ऐसे इसमें वर्णन है कि जो सुशीला थी वो इतनी अच्छी एक पत्नी थी कि कभी भी सुदामा को इसके लिए कभी यू नो कुछ बोलती नहीं थी। वो तो बहुत चेस्ट वाइफ थी। यहाँ पे बताते हैं दैट शी वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन ब्राह्मणा यू नो, बट एक बार जब उससे ये दुख देखा नहीं गया अपने बालकों का, तो इसके लिए वो जाके सुदामा के पास कहा। तो बताते हैं कि स्त्री की परीक्षा तब होती है जब जीवन में बहुत दुख का समय आए। इंडीड नॉट ओनली स्त्री, ऐसे बताते हैं कि चार प्रकार के जो लोग है गोस्वामी जी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल परिचय ताचारी। कि ये चारों का परिचय कब मिलता है कि धीरज, आदमी का धीरज टूट जाता है जब उस पर दुख का जब पहाड़ टूट पड़ता है, सो उसका धीरज खत्म हो जाता है, यू नो देन ही इज नॉट एबल टू टॉलरेट। एंड कई बार इसीलिए कोई व्यक्ति या तो सुसाइड कर लेता है या फिर कोई गलत काम कर लेता है या फिर भगवान से अलग हो जाता है कि भाई यू नो, जैसे एक बार एक ये पहले भी शायद मैंने आपको बताया था कि एक क्रिश्चियन पादरी था जिसका बेटा जवानी में ही मर गया। तो उसने एक बुक लिखी व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल, ये बुक अवेलेबल है मार्केट में। तो उसने कंक्लूड किया उस बुक से और कहा कि भगवान यू नो, हम कहते ना कि भगवान इज ओमनीपोटेंट ओमनीसेंट ओमनीप्रेजेंस ओमनी यू नो नोअर और सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आइदर द गॉड इज ऑल पावरफुल और ही इज ऑल मर्सीफुल और ही इज ऑल नॉलेजेबल, बट ही इज नॉट ऑल थ्री। ही कंक्लूडेड, ही सेड दैट ही इज नॉट ऑल थ्री, सो आइदर ही इज ओमनीप्रेजेंस ओमनीसेंट एंड यू नो तो मर्सीफुल ओमनीपोटेंट, बट आइदर उसके पास या तो पोटेंसी नहीं है, और या अगर पोटेंसी है तो ही इज एक्चुअली नॉट मर्सीफुल, यू नो, क्योंकि अगर ताकत है और मेरे बच्चे को बचा सकता है लेकिन यू नो दिल अच्छा नहीं है भगवान का, इसके लिए उसने मेरे बेटे को बचाया नहीं, या वो जानता ही नहीं था, या पहले बोला कि या तो वो जानते नहीं है, तो सेकेंडली ये सेड नहीं है, जानते हैं शायद पावर भी है लेकिन मर्सी नहीं है, या फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जानते भी है मर्सीफुल भी है लेकिन इतना ताकत नहीं है कि मेरे बेटे को बचा लेगा, तो वो भगवान नहीं है, या फिर ताकत भी है कृपा भी है लेकिन शायद नॉलेज नहीं है, जानते नहीं कि किसी कॉर्नर में बैठा हुआ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो कंक्लूड कर दिया। तो कई बार आदमी का धीरज टूट जाता है, उसका धर्म भी भ्रष्ट हो जाता है, मित्र मित्र भी जब आफत में होता है ना, तो ऐसे कई यू नो हितोपनिषद में कहानियां है कि जब तक व्यक्ति के पास पैसा है तब तक सब उसके मित्र है, और जैसी दरिद्री आ जाती है सब उससे यू नो दूर कर लेते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुशीला जो थी वो बहुत अच्छी थी, उसने जाके कहा कि स्वामी मैं अपने लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन तुम ये जिस सखा के बारे में रोज कहानी सुनाते हो हम लोगों को, कभी जाके उससे मिल तो लो। और मैं जानती हूँ कि आप अयाचक प्रवृत्ति के हो, आप मांगोगे तो नहीं, तो मैं आपको मांगने के लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन आप जाओ सिर्फ चले जाओ उनसे मिल लो और मिल के साथ हमारा कुछ भला हो जावे तो यू प्लीज गो। सो सुदामा भी सोचते हैं कि सुशीला ने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा, आज ये आकर कह रही है तो शायद सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा संत तुकाराम के जीवन में भी हुआ था कि तुकाराम अपना भजन करते थे और घर में कुछ होता नहीं था खाने के लिए, या बच्चा बीमार पड़ जाता था और वो विट्ठल के ऊपर अपना पूरा आश्रय रखते थे, और एक बार उसकी पत्नी ने आके इतना लतेड़ा उनको, और उन्होंने सोचा अरे मुझे अपना कुछ तो करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। तो सुदामा ने सोचा कि पर मैं अयाचक प्रवृत्ति का हूं, मैं मांगूंगा तो नहीं, लेकिन ये एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कृष्ण का दर्शन करने के लिए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, वो कहते हैं कि अयम ही परमो लाभ, कह रहे मेरा कितना बड़ा लाभ होगा अगर मैं जाके कृष्ण से मिलता हूँ, कितने साल हो गए, इतने सालों के बाद मैं कृष्ण से मिलूंगा, तो भगवान को देखने की इच्छा, भगवान को मिलने की इच्छा एकदम उसके दिल के अंदर एकदम उत्कंठित हो गई कि भाई नहीं अभी तो मैं जाके भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान को मिलूंगा। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम जब लोग धाम में जाते हैं यू नो पर्टिकुलरली जब वृंदावन या मायापुर जाते हैं, तो कई बार जब सुबह होती है तो उठ के फटाफट धोती होती पहन के लग लगा के तुरंत भागते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए कि भाई मंगल आरती का दर्शन खुलने के पहले यू नो मैं चला जाऊं वहां पे और मैं भगवान का दर्शन कर लूं। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने देखा था कि जब हम बरसाने में थे तो 3:30 बजे उठ के और वो राधा रानी का मंदिर इतना ऊपर है, 1000 सीढ़ियां रहेगी कम से कम, और एकदम बूढ़ी बूढ़ी औरतें 70 साल की 80 साल की 60 साल की वो ऐसा भागती है राधे 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 बोल के कि मैं तो अचरज में रह गया। पहली बार जब मैंने सीन देखा मैंने कहा वाह कितना मतलब उत्साह है इनको देखने के लिए, यू नो भगवान के लिए। और जबकि वो वहीं रहते हैं, हम लोग साल में एक बार आते हैं तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा लेट हो गया तो सुबह उठने को नहीं होता है, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत अद्भुत है, यू नो बताते हैं खुद परीक्षित महाराज कहते हैं कि आंख वो है जो भगवान का दर्शन करे, नहीं तो केवल खड्डा है, कान जो है भगवान का श्रवण करे, पैर जो है भगवान के पास चल के जावे, हाथ जो है भगवान की सेवा करे। तो कहते हैं यू नो मैं जाऊंगा और भगवान से मिलूंगा, तो भगवान से मिलने की लालसा थी तो उसके लिए वो जाने की कोशिश कर रहे थे। तो बता वो सोच रहे थे कि किस प्रकार से मैं और कृष्ण जो थे यू नो सांदीपनि के मणि के आश्रम में हम लोग पढ़ते थे। तो मैं वापस से उस स्टोरी पे आता हूँ। तो वो दोनों जब यू नो ये पोरबंदर में रहता था, वो मथुरा से कृष्ण दोनों जब वहां पर मिले और दोनों साथ में एजुकेट हो रहे थे, तो एक बात हमको ये समझने की जरूरत है कि कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान कृष्ण हाँ उनको एजुकेशन की क्या जरूरत है, या मतलब उनके पास कोई विद्या कम थी कि विद्या लेने के लिए गए हैं, कि विद्या का पति हाँ विद्या का मालिक जो है भगवान कहते हैं गीता में, जिस भगवान ने यू नो खड़े होकर गीता सुनाई अर्जुन को, जो आज तक लोगों के समझ में नहीं आ रही है कि क्या उन्होंने बोला और क्या मतलब यू नो इतना, तो उसमें भगवान खुद कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम हाँ पवित्रम इदम उत्तमम। तो कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम, विद्या मीन्स एजुकेशन, राज मीन्स किंग, सो किंग ऑफ एजुकेशन कृष्णा गेव, और वह राजा हाँ विद्या का वो आज जाने के लिए जाता है। तो कहते हैं कि कई बार इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के पास विद्या नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक प्रिंसिपल स्थापित करना चाहते हैं कि हर किसी को अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। तो भगवान ने कहा कि भले ही मैं भगवान हूं लेकिन फिर भी मैं गुरु के पास जाऊंगा, और एक क्योंकि भगवान कहते हैं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसके, हे पार्थ सभी लोग मेरा ही अनुगमन करेंगे, इसलिए मुझे स्थापित करने के लिए एक एग्जाम्पल मैं जाता हूं। तो वो गए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, हाँ जैसे मैंने कहा कि महाविष्णु जब आते हैं तो उनके श्वास निश्वास से पूरा यू नो यूनिवर्स पैदा होता है, और भगवान के श्वास और निश्वास से वेद निकलते हैं। हाँ वो कहते हैं कि जाके श्वास वेद सुतिचारी सो हरि पढ़ही को जाए ये कौतुक भारी। हाँ तो बोले कि जिनके श्वास से, बोलते भगवान को छोड़ो भगवान के सांस से वेद निकलते हैं वो तो अलग बात है, भगवान का जो व्हीकल है हाँ कौन, भगवान का जो वाहन है कौन, गरुड़। तो गरुड़ जब उड़ता है तो आपको पता है गरुड़ जब उड़ता है तो गरुड़ के पंख में से सामवेद की ध्वनि निकलती है। तो सोचो हमारा जो व्हीकल है उसमें से केवल धुआं निकलता है और कुछ नहीं निकल सकता, लेकिन भगवान के व्हीकल में से सामवेद जो कि म्यूजिक का सबसे उत्तम यू नो जो है वो उसकी ध्वनि निकलती है। तो बोले कि जिसके व्हीकल में से यू नो सामवेद की ध्वनि निकले, उसके श्वास में से ध्वनि निकले, क्या बड़ी बात है। लेकिन हमारे श्वास में से क्या निकलता है, केवल खर्राटे। रात को जब आदमी सोता है और वो भी दूसरे को डिस्टर्ब करता है और आदमी सोचते हैं कहीं से नाक दबा दो इसका क्या कर लूं करके ना ऐसा। तो एक बार कृष्ण अर्जुन के पास गए, अर्जुन सो रहा था और सोते सोते अर्जुन के श्वास निश्वास से नाम आ रहा था कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे कि यही डिफरेंस है अर्जुन में हमारे में, कि अर्जुन जब सोता है तब भगवान का नाम लेता है और जब हम भगवान का नाम लेने जाते हैं तभी सो जाते हैं। तो भगवान का नाम में वहीं पे तो एनीवे गोस्वामी जी कहते हैं कि तो भगवान बताना चाहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, इसके लिए वह भगवान हाँ जो गीता के अंदर बोले हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यामि च भूतामि माम तु वेदन कश्चन, कि मुझे भूत भविष्य सब कुछ ज्ञात है। तो वहां पे पढ़ रहे थे और एक बार सांदीपनि मुनि ने कोई लेसन दिया रहेगा और कहा था कि भाई कल बताना, तो सुदामा से पूछा। अब सुदामा भी खेल खेल में ब्राह्मण था, खेलने में ज्यादा मन था, उस दिन लेसन याद नहीं किया तो उसको सजा मिली। उसको बोला कि जाके ईंधन की लकड़ी आज तुझे लेके आना है जंगल में जाके। फिर कृष्ण को पूछा तो कृष्ण ने सोचा कि यार मेरे दोस्त को सजा मिली है, अगर मैं श्लोक बोल दूंगा तो बेचारा अकेला जंगल में जाएगा, तो इसके लिए चलो अपन भी सेक्रीफाइस करते हैं। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, वह भगवान जो भूत भविष्य वर्तमान सभी जानते हैं, उन्होंने कहा मुझे पाठ याद नहीं हुआ। तो सांदीपनि मुनि ने बोला फिर तुम भी जाओ, दोनों जाओ और ईंधन लेके आओ। और वो जाने लगे तभी गुरु माँ ने उनको थोड़ा चना पोटली में बांध के दे दिया। और कई बार कृष्ण राजा की तरह होते ना, अपन खुद कोई सामान उठाते नहीं है, दूसरों को देते हैं। तो वो मुरली लिया, बोला यार मेरा एक मुरली है, मैं तो नहीं उठाऊंगा, तू उठा। तो चना का पोटली उसको दे दिया। दोनों जंगल में गए और लकड़ियां तोड़ने के लिए, और सुदामा ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण तुम इधर वेट करो नीचे, मैं जाके ऊपर चढ़ के लकड़ी तोड़ के लेके आता हूँ, क्योंकि तुम चढ़ नहीं पाओगे, तुम राजा के पुत्र हो। तो उसने कहा अरे 11 साल तक यही किया है मैंने, यू डोंट वरी, मैं ऊपर जाता हूँ, तू नीचे खड़ा रहे। और उसको नीचे खड़ा करके कृष्ण ऊपर चले जाते हैं। और तभी भगवान के अरेंजमेंट से बहुत जबरदस्त बारिश होने लगती है, जैसे आज इधर आबू धाबी में बारिश हो गया, हम क्लास में आ रहे थे सब बारिश ही बारिश हो रहा था। तो बारिश होने लगा, सुदामा भी दूसरे पेड़ पे चढ़ गया अपने को बचाने के लिए, और बहुत हवा आ रही थी, कंपकंपी सी छूट रही थी। तो ऑब्वियसली जब ठंडी होती है तो भूख लगती है, पकौड़े खाने का मन करता है। उस समय पकौड़े तो थे नहीं उनके पास, चने थे। तो सुदामा एक 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 करके चने खाने लगा, और जैसे ही चने खाया अपनी पोटली पूरी खा ली, और भूख लगी थी, उसने सोचा थोड़ा कृष्ण में से भी खा लूँ तो क्या है, कोई बात नहीं। तो कृष्ण में से खाना शुरू किया, और कृष्ण ये बात जानते थे, ऑब्वियसली भगवान तो सभी के हृदय में है, ईश्वर सर्वभूताना हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, बाजू के वृक्ष में थे। उन्होंने आवाज लगा कि ए सुदामा तुम कुछ खा रहा है क्या? तो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं खा रहा हूँ। बोले नहीं कुछ चबाने की आवाज आ रही है? तो बोला नहीं वो तो मेरे दांतों की कटकटाने की आवाज आ रही है, ठंडी बहुत है ना खाना, इसलिए दांत मेरे कटकटा रहे हैं। और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो पूरा खा गया। जब सुबह हुई नीचे उतरे, कान्हा ने कहा अरे मेरा भाग दे। तो बोला अरे आई एम सॉरी, मैंने खा लिया, कल बहुत भूख लगी थी मुझे। तो कृष्ण ने कहा चलो कोई बात नहीं। और वो दोनों जाते हैं वहां पे, और भगवान 64 दिन में 64 कला सीख के ग्रेजुएट हो जाते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रेजुएट इन द होल वर्ल्ड भगवान कृष्ण ने किया, 64 दिन में 64 कला सुन के निकल गए और वापस से चले गए। तो ये सुदामा ये सोच रहा था, तो जब उसके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, वहां पर जाने लगा तो सोचा पोरबंदर से चलते चलते द्वारका जाएगा, तो कई बहुत समय लग जाता है। और पहले तो सुदामा की कंडीशन समझने की कोशिश करो कि सुदामा जो था वो गरीब ब्राह्मण था। ऐसे बताते हैं कि केवल हड्डियां उसके शरीर में थी, बाकी कुछ था ही नहीं, और नसें दिखती थी, और एकदम दुबला पतला, और इतना दुबला पतला और कमजोर था कि खुद अपने आप चल नहीं पाता था। हालांकि बूढ़ा नहीं था लेकिन फिर भी लकड़ी लेके चलना पड़ता था उसको, इतना वो थका हुआ था। और बिल्कुल मतलब पेट और पीठ दोनों एक हो गया, ऐसा इस प्रकार की यू नो सिचुएशन है। और वो चलते चलते जा रहा है और धीरे 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 चल रहा है, लेकिन जब वो जाने की सोचता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि अरे कान्हा जो है मेरा मित्र है, मैं खाली हाथ अपने मित्र के घर कैसे जाऊंगा। तो ऐसे बताते हैं शास्त्र में कि जब कभी भी राजा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, मित्र के पास जाओ, अपनी बहन के पास जाओ या अपनी बेटी के पास जाओ, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लेके जाना चाहिए, ये शास्त्रों का निर्देश है। तो उसने कहा कि मैं कृष्ण मित्र के पास जा रहा हूं, मैं तो कुछ तो मैं उनके लिए लेके जाऊं, तो जा कुछ है तो लेके आ। सुशीला गई किचन के अंदर, सब डब्बे खोल के देखे तो एक दाना नहीं था। तो पीछे के दरवाजे से चुपचाप पड़ोसी के पास गई और उससे कहा कि कुछ मुझे दे दे। अभी गरीब आदमी का पड़ोसी भी गरीब ही होता है ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यू नो। एक अगर बंदा पॉश लोकेलिटी में रहेगा और कोई झोपड़ी में रह रहा है तो ऑब्वियसली झोपड़ी का पड़ोसी भी वैसा। तो उसके घर पे भी बेचारे कुछ था नहीं। तो ऐसे बताते हैं कि चार घर से अलग अलग चार मुट्ठी, कोई कहता है चावल, कोई कहता है पोहा, वो मांग के लाई और कैसी तैसी एकदम यू नो गठरी के अंदर बांध के और सुदामा को दे दिया। और सुदामा वो गठरी लेके चल रहे हैं। बड़ा करुण दृश्य है अगर आप इमेजिन करने की कोशिश करो। सुदामा से चला नहीं जा रहा है और चलते चलते वो थक जाता है, थक के बैठ जाता है। वहां को चार मुसाफिर जाते रहते हैं, उनको रोक के पूछता है कि भैया ये द्वारका किधर, कौन सी दिशा में और कितना दूर है। तो मुसाफिर कहते हैं कि किसको जाना है? तो कहते हैं मुझे जाना है। तो कहते हैं कि फिर नहीं हो पाएगा तुमसे, इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर लेके तुम द्वारका तो नहीं पहुंच सकते, बीच में ही प्राण त्याग दोगे। तो बोले तुम्हारे से नहीं होगा, तुम नहीं जा पाओ। तो सुदामा को बड़ा दुख हुआ कि अरे मेरा शरीर ऐसा है कि मैं भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा पाता हूँ। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि जब हमारा शरीर स्वस्थ है ना, ये सब कर लेना चाहिए। बुढ़ापे में पता नहीं कब हमारे को क्या मिले ना मिले। नहीं तो कई बार लोग सोचते हैं ऐसा कि अभी तो जवानी है, अभी गीता क्यों पढ़े, जब समय आएगा तब पढ़ेंगे, पता नहीं वो समय कब आएगा। तो सुदामा सोचता है कह रहे मैं कृष्ण से मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन भगवान का भक्त है वो, विशुद्ध भक्त है, और भगवान के भक्त में भगवान को मिलने की उत्कंठा होती है, और वह उत्कंठा उसको उठाती है और आगे लेके जाती है। तो उसने सोचा कि नहीं मैं तो भगवान से मिलने, खड़ा हो गया और चलने लगा, और चलते 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 कई घंटे कई दिन बीत गए, और वो संभव द्वारिका में पहुंचता है। और द्वारिका में जब जाता है तो देखता है कि इतना मतलब भव्य वैभव है द्वारका का, अलग अलग यू नो तरह के सब वहां पर सारे के सारे मतलब वृक्ष है, महल है, और यू नो रॉयल रोड पे वो चल रहा है, और चलते 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 किसी के पूछ के अल्टीमेटली वो राजा के महल में, द्वारकाधीश के महल में, कृष्ण के महल पे पहुंचता है। अभी कृष्ण को राजा को मिलना इतना आसान तो नहीं है, उसके द्वार के ऊपर द्वारपाल है, वो वहां पे इमीडिएटली उसको रोक देते सिक्योरिटी चेक के, मंदिर नहीं जा सकते ना। प्रभुपाद कई बार बोलते थे कि हम जब किसी कंट्री में जाते हैं प्रचार करने के लिए तो इमिग्रेशन ऑफिसर हमारे को रोक लेते हैं, और कई बार हमारे को बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे प्रचार में बाधक है ये सब। तो जैसे हनुमान जी जब समुद्र को लांग कर अल्टीमेटली लंका में पहुंचे और लंका में घुसने वाले थे तो लंकिनी ने वहां पे रोका। प्रभुपाद कहते लंकिनी इज इमिग्रेशन ऑफिसर, वो उसको अंदर अलाउ नहीं कर रही थी कि तुम्हारा वीजा किधर है, जाने नहीं दूंगी। और तब हनुमान जी ने फिर एक झापट लगाई उसको, और वो स्टोरी हम जानते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने रोक लिया, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। और आप सोचो कि इतने दूर से व्यक्ति इस अवस्था में चलता हुआ आया है और कोई उसको अंदर नहीं जाने देगा तो उसको कैसा होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जर्नी होम बुक में राधानाथ महाराज लिखते हैं कि इतनी दूर से यू नो लंदन से वो चलते 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 और भारत पहुंचे हैं, और भारत में बॉर्डर में वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वो लेडी उनको अलाउ नहीं करती है, और वो रोते हैं कहते हैं कि मुझे अलाउ करो यू नो मैं कुछ भला करूंगा लोगों का। तो वैसी स्थिति में सुदामा को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि कौन है तू, किससे मिलना है, कहाँ जाना है। तो कहता है कि मुझे कृष्ण से मिलना है। तो कहते हैं अरे कृष्ण से मिलना है, कौन है तू, बोलते मैं कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ। तो वो हंसने लगते हैं, बोलते हर कोई भिखारी आके ऐसे ही बोलता है यू नो। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग जाके बोल देवे कि नरेंद्र मोदी हमारे मित्र है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी हमको मित्र मानने चाहिए, तभी कुछ एक बात बनेगी, नहीं तो कोई भी कुछ भी बोल देगा ना कि भाई जाना है, तो उसको जाने के लिए नहीं देते हैं। और वो बहुत अनुनय विनय करता है कि नहीं मुझे कृष्ण से एक बार मिलने दो, और जब बहुत बार करता है तो वो भी झुंझलाते हैं द्वारपाल और धक्का दे देते हैं उसको, गिर जाता है। तो जब गिर जाता है रोने लगता है, रोते रोते कहता है कि जब मैं यहाँ पर प्राण त्याग दूंगा तब जाके कृष्ण से बताना कि उनका मित्र सुदामा आया था और शायद कृष्ण आके यहाँ पर आंसू बहाएंगे। तो जब ऐसा कहता है तो उसमें से एक द्वारपाल को दया आ जाती है और वो सोचता है कह रहे इतना बोल रहा है क्या फर्क पड़ता है, जाके राजा को बता देते हैं। तो ऐसा एक महाराज बोल रहे थे कि शायद वो द्वारपाल जय विजय में से एक होगा, क्योंकि उनका फॉल डाउन हुआ था वैकुंठ से जब चार कुमारों को अंदर जाने से मना किया था। तो उन्होंने बोला यार एक नंगे चार ब्राह्मणों को अलाउ नहीं किया था हमने छोटे बच्चों को अंदर जाने के लिए, तो तीन जन्म लेने पड़ गए। कौन कौन से? पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, फिर रावण कुंभकर्ण और दंतवक्र और शिशुपाल। तो बोले कि अब नहीं करेंगे वो गलती वापिस से, कहीं द्वारकाधीश ने आके वापिस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो वो जाके, और कृष्ण अपने रुक्मणी के महल में सोने के पलंग पे बैठे हुए हैं, और वहां पर यू नो सत्यभामा उनको पंखा कर रही है, रुक्मणी उनको कुछ खिला रही है, और तुरंत बीच में जाके रो टोकते और कहते हैं कि द्वारकाधीश की जय, और कहते हैं कि कृष्ण को कहते हैं कि कोई एक विप्र आया है, कोई ब्राह्मण आया है द्वार पे, बार बार अनुनय विनय कर रहा है तुमसे मिलने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि कौन है? तो कहते हैं कि शीश पगान झगा तन में प्रभु, जाने को आ ही बसे कहीं ग्रामा, कि ना तो उसके शीश पे पगड़ी है ना उसके तन पे जामा है, न सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा। तो कहते हैं कौन से गांव से आया है वो भी हमको पता नहीं है, और धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान नहीं ओ नहीं सामा। तो बोलते हैं कि धोती भी बेचारे की छोटी सी है, फटी हुई है, एक लिपटी हुई धोती है, और पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, और द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक रहियो चौकसी वसुध्या अभिरामा। तो बता के द्वार पे खड़ा है और बस आपके वैभव को निहार रहा है, और पूछत दीन दयाल को धाम, और बार बार आपके बारे में पूछ रहा है। हाँ, तो कृष्ण कहते कौन है ऐसा, क्या तुमने पूछा उसका नाम क्या है? तो कहते हैं कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम कृष्ण सुनते हैं एकदम जोर से उछल जाते हैं सुदामा, और कूद के एकदम अपनी खड़ाऊ भी पहनते नहीं है और तुरंत भागते हैं एकदम महल के द्वार पे, और रुक्मणी सत्यभामा सब प्राणियां पीछे पीछे, सारे गार्ड उनके पीछे पीछे, कह रहे कृष्ण को क्या हो गया, अचानक कहाँ भाग रहा है कृष्ण, और वो ऐसा भागना शुरू करते कि पीछे देखते नहीं है। तो ऐसा दृश्य आप सोचो कि एक द्वारकाधीश द्वारका नाथ अपने द्वारका की सड़क पे वो भाग रहा है पैदल बिना खड़ा हुआ पहने। हाँ, तो द्वारपाल और सारे द्वारकावासी देख रहे हैं कि वो सड़क जिस पर कृष्ण तेज चलते नहीं है, अपने बिना खड़ाऊ के बिना स्वर्ण रथ के जिसपे बढ़ते नहीं आगे, आज उसके ऊपर ये द्वारकाधीश भाग रहा है, ये किससे मिलने के लिए भाग रहा है। और जैसे ही जाता है और दौड़ते 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 सुदामा के पास जाता है और बहुत जोर से चिल्ला के कि हे मित्र सुदामा, वो जाके उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। और कृष्ण जैसे उसको अपनी बाहों में भरता है अविरत उनके आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है। सुदामा उधर रो रहा है, कृष्ण रो रहे हैं, और कृष्ण को रियलाइज होता है कि थोड़ी देर में अगर और इसको ऐसा पकड़ के रखूंगा तो शायद ये मर जाएगा, इतनी भी ताकत नहीं है इसमें। तो कृष्ण उसको अपनी गोदी में उठाते हैं और गोदी में उठा के फिर अपने महल के अंदर लेके आते हैं पैदल, और सारे के सारे जो द्वारपाल है वो शर्म के मारे शीश झुकाए खड़े, और वो आते हैं और आके जो स्वर्ण सिंहासन पर जिस पलंग पर वो बैठे रहते हैं वहां सुदामा को बिठाते हैं और कहते रुक्मणी तुम लेके आओ, यू नो इनके विप्र आए हैं और इनकी इनके हमको चरण धोने हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना है, जाओ सारी तैयारी करो। ऐसा लाके जैसे ही उसको बिठाते हैं और तुरंत सबको आदेश देते हैं तो रुक्मणी वहां से पानी की परात लेके आती है धोने के लिए, उनका पैर जो है वो परात में रखते हैं, और कृष्ण नीचे बैठ के क्योंकि ब्राह्मण है और कृष्ण क्षत्रिय है, हाँ वो वहां पर बैठ के उनके पैर धोने के लिए, पर जैसे ही पैर धोने के लिए उनके चरण कमल को हाथ लगाते हैं, उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, कृष्ण एकदम रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि पैर की बुआई फटी हुई है, उसमें से खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, और पहनने के लिए खड़ाऊ नहीं थी, कांटे लगे हुए उसके अंदर से और इतना खून निकल रहा है। वो कृष्ण को देख के, तो एक कवि कहते हैं कि सुदामा की इस प्रकार की हालत देख के कृष्ण की क्या हालत होती है, वो कहते हैं कि देख ही सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, कि वो रोने लग जाते हैं। कहते हैं कि देख ही सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन से नयनन के जल से पग धोए, कि वो पानी परात को तो हाथ ही नहीं लगाया जो रुक्मणी लेके आई, और इतने आंसू निकले उनके। सोचो जो भगवान क्षीर सागर समुद्र में रहते हैं वो अपने आंखों से क्षीर सागर बहा रहे हैं आज यहाँ पे, और रो रहे हैं, और रोते 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 उनके चरण धोते हैं, और चरण धो के और वो जो पानी है वो अपने सिर पे छिड़कते हैं और सारी रानियों पे छिड़कते हैं, और फिर कहते हैं कि सुदामा को यू नो हम लोग नहलाते हैं, इतने दिन से आए हैं नहाए नहीं है, तो कृष्ण उसको नहलाने की कोशिश करते हैं। सारी रानियां सोचती है ब्राह्मणों को नहलाने का बड़ा पुण्य मिलता है, एक एक बाल्टी सब लेके आ जाती है, तो सुदामा देखते 16108 बाल्टियां है, तो बोलते बाबा इससे नहलाओगे तो निमोनिया हो जाएगा मुझे, तो कृष्ण आपने नहलाया उतना ठीक है। और कृष्ण कहते हैं कि विप्र आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, चलो इनको ढोक लगाओ और सब आशीर्वाद प्राप्त करो, अपनी रानियों को कहते हैं। तो रुक्मणी आगे आती है, सुदामा हाथ ऊपर करके कहते हैं आयुष अखंड सौभाग्यवती भव आयुष्मान भव, और जो भी सब आशीर्वाद देते हैं सत्यभामा को, ऐसा कर करके एक आती है, दो आती है, तीन आती है, चार आती है, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर हाथ थक जाता है सुदामा का, हाथ थोड़ा नीचे आता है आयुष्मान भव, फिर एकदम नीचे हाथ रख के बस खाली हाथ हिला रहे हैं। फिर कृष्ण को पूछते कितना हुआ, बोलते अभी तो खाली 600 हुआ है, 16000 है, तो कहते हैं बस माफ करो बाबा, मैं कृष्ण तुमको आशीर्वाद दे देता हूँ, इतने लोगों को आशीर्वाद नहीं दे सकता। और फिर कृष्ण जो है उनको अच्छे वस्त्र पहना के और अपने महल में वो रात को सोते हैं दोनों जन एक ही पलंग पे, और सो के फिर वही अपनी बातें याद करते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि किस प्रकार से वो सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहे और एक दूसरे से बात करते हैं, और कृष्ण कहते हैं कि अरे सुदामा इतने टाइम हो गया, हाँ कभी मिले नहीं, कोई चिट्ठी नहीं किया, कोई व्हाट्सअप मैसेज नहीं भेजा मेरे को, हाँ कुछ तो बताना था, शायद शादी तो तुमने कर ही ली होगी, हाँ बुलाया भी नहीं मुझे, बताया भी नहीं। तो सुदामा ने कहा यार मैंने तो एक शादी की है, हाँ और मैं तो गरीब, चिट्ठी लिखने के भी पैसे नहीं थे, तूने तो 16108 की ना, तू तो कभी बुला लेता मुझे, तूने मुझे उस शादी के अंदर नहीं बुलाया। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को जोक मार रहे हैं, हंस रहे हैं और अपना समय बिता रहे हैं। और उसके बाद में दूसरे दिन कृष्ण सुदामा, एक्चुअली सुदामा जब इस प्रकार से होता है तो कृष्ण उससे कहते हैं कि अरे भाभी ने अगर मुझे भेजा है तो कुछ मेरे लिए कुछ गिफ्ट भेजा होगा। तो सुदामा को इतनी शर्म आई इन 16,108 पत्नियों और रानियों के बीच में कि ऐसी यू नो इस प्रकार का ये पोहा मैं कैसे दूंगा उसको। तो कृष्ण तो समझ जाते हैं, पोटली छीन के और जब खोलते हैं तो ओ ऐसी दुर्गंध आती है कि सब रानियां पीछे हो जाती है, क्योंकि इस इतने टाइम से उसको बगल में बिठा के और वही पसीना वसीना सब लग गया उसके अंदर। यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो खोल के देते हैं और कृष्ण सोचते कि ओ हो इतना अच्छा तुम मेरे से छुपा रहे थे। और तुरंत भागवत बताता है कि एक मुट्ठी भर के और कृष्ण अपने मुख में डालते हैं, और जैसे ही अपने मुख में देते हैं सुदामा को एक पूरा लोक दे देते हैं कृष्ण। और दूसरे मुट्ठी जैसे लेने जाते हैं रुक्मणी और सत्यभामा तुरंत हाथ पकड़ती कृष्ण कि बस दिस इज इनफ, यू नो अगर तुम दूसरा दे दिया तो हमको भिखारी बनना पड़ेगा, तुम सुदामा बन जाओगे वो कृष्ण बन जाएगा। तो उसको रोकते हैं और सुदामा कुछ कृष्ण से कुछ मांगता नहीं है और कृष्ण भी उसको अपेरेंटली उसके सामने कुछ नहीं देते हैं। इंडीड ऐसा वर्णन आता है, कुछ तो भक्त ऐसे बताते हैं कि जो कपड़े सुदामा को कृष्ण पहनने के लिए देते हैं, सुदामा जब वापिस निकलने लगता है और उसको चप्पल भी देते हैं, कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं अपने भाव से कि कृष्ण वो कपड़े सुदामा से दूसरे दिन खुलवा के ले लेते हैं वापिस से। तो सुदामा जैसे जाने लगता है तो कृष्ण कहते हैं कि अरे सुदामा जरा इधर आना इधर आना। तो अच्छा ठीक है तू संभल के जाना। फिर 10 कदम आगे लेता है वापिस बुलाते हैं, अच्छा भाभी को मेरा याद देना। तो सुदामा का समझता नहीं कि बार बार कृष्ण क्यों बुला रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि यार ये पीताम्बर जो है ये मेरा है। तो सुदामा सोचता है कि कैसा आदमी है, यू नो ये पीताम्बर भी मुझसे वापिस मांग रहा है। और कृष्ण उसको देते हैं और अपनी वापिस से वही लकुटी लेके धोती लेके और निकलते हैं। और जब वो बाहर निकलते तो सारे के सारे द्वारकावासी उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हर कोई आता है भगवान के पास कुछ न कुछ मांगने के लिए, टू डू लिस्ट लेके आता है अपने पास में, लेकिन इसने कुछ नहीं मांगा है। तब उसको समझ में आता है कि देखो अगर मुझे कृष्ण अपना पीताम्बर दे देता था तो ये यश नहीं मिलता था। हाँ लेकिन उसको भेजते हैं और रुक्मणी उसको पूछती है कि अरे कम से कम खड़ाऊ तो दे देने थे उसको पहनने के लिए, बेचारा आया तब पैर में खून लगा हुआ था और तो कम से कम खड़ाऊ तो देनी थी, खड़ाऊ तो तुमने दी थी वो कहाँ गई। तो कृष्ण अपने कुर्ते में से वो खड़ाऊ निकालते बोलते ये इधर है। तो बोला तुमने उसकी खड़ाऊ चुरा ली उसको दिया नहीं। तो बोला नहीं ये खड़ाऊ मेरे लिए है, यू नो इसको मैं वर्शिप करूंगा। और बोले कि ये जो ब्राह्मण है ये इतना पवित्र है कि ये अपने आप में तीर्थ है। हाँ भागवत कहता है कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणि, हाँ जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवत अधर्मशीलस्य सुदुःखतस्य अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो कहते हैं कि ये जो लोग है ये इस धरती पे इसलिए फिरते हैं कि ये अपने आप में एक तीर्थ है और जिस जगह पे जाते हैं उसको तीर्थ स्थान बना देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि द्वारका के हर स्थान को ये तीर्थ बनाता हुआ जाए। और आगे सुदामा जाते हैं और जाते 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 जब अपने गांव पहुंचते पोरबंदर तो अचानक गांव में देखते हैं कि जहां मेरा घर था वो तो गायब हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक बहुत बड़ी इमारत आ गई है और बहुत सारी अप्सराएं जैसी वहां पे औरतें हैं और वो सब है। तो देख के एकदम चकित हो जाता है कि अरे क्या हो गया, मतलब मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गया। तो ऊपर से उनकी पत्नी ने देखा सुशीला ने और आवाज मारी कि हे प्रभु। तो देखा तो पहली बार तो मैं समझ में नहीं आया कि अप्सरा आवाज कौन मार रही है यू नो मेरे को। फिर ध्यान से देखा तो पता चला रहा ये तो सुशीला है। तो फिर जाके पता चला कि ये भगवान कृष्ण ने हालांकि उस समय मुझे कुछ नहीं दिया और उसने भी कुछ मांगा नहीं था, लेकिन भगवान ने उसको इतना कुछ दिया कि अपने जितना वैभव दे दिया। हाँ तो कई बार ऐसा होता है कि देखो दोस्ती के बहुत सारे किस्से हमने देखे कि जब द्रोण द्रुपद के पास कुछ मांगने के लिए एक गाय मांगने के लिए गया था, केवल इतनी इंसल्ट करके उसका भेजा, बोला कि तू गंगू तेली में राजा भोज, हाँ तेरी मेरी कोई बराबरी नहीं हो सकती, तू मुझे अपना मित्र कहता है, तेरे ऐसे भिखारी को मैं मित्र नहीं बनाता। और उसके बाद सारा महाभारत का युद्ध हुआ इतना सारा। तो भगवान कृष्ण अपने जितना वैभव सुदामा को दे दिए, सोचो। तो भगवान जो दोस्ती निभाते हैं तो उसके अंदर कोई भगवान को कुछ दे के, कभी कभी हमारे को ऐसा लगता है कि हम भगवान को अपना धन अपनी ऊर्जा अपना समय दे के शायद निर्धन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को अगर हम लोग 1 रुपया देते हैं तो भगवान एक है ना करोड़ों रुपए हमको वापस दे देता है। हमारे पास 2 हाथ है, हम भगवान को 2 हाथ से कितना देंगे, भगवान के पास 1,000 हाथ है, हजार हाथ से जब वो देना शुरू करते हैं तो हम दो हाथ से कितना पकड़ पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो रेसिप्रोकेशन है भगवान का वो इतना सर्वोच्च है कि कोई व्यक्ति भगवान के पास चाहे किसी भी, एक्चुअली भक्ति जो है वो अहेतु की होनी चाहिए, जैसी सुदामा की थी। सुदामा कुछ मांगने के लिए नहीं गया था, केवल कृष्ण से मिलने के लिए। इसलिए भागवत कहता है कि सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, कि आत्मा तभी शांत हो सकती है जब हमारी भक्ति अहेतु की हो, कोई हेतु ना हो भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर, हम लोग नहीं कर सकते। हम जो स्थिति में है अभी उसमें भी भागवत हमको सॉल्यूशन देता है और कहता है कि अकाम सर्व कामो वा, या तो अकाम भक्ति है आपकी या पूरी काम से भरी हुई है। जैसे कि ध्रुव था, ध्रुव भगवान के पास मांगने के लिए गया था, उसको क्या चाहिए था, आई वॉन्ट ए ग्रेटर किंगडम देन माई फोर फादर। तो भगवान के पास गया, लेकिन जब भगवान का दर्शन किया तो उसने कहा कि अब मैं भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहता। भगवान को कहता है कि आई वॉज लुकिंग फॉर ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास एंड आई गॉट रियल डायमंड, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, तुझे ब्रह्मा से भी बड़ा साम्राज्य दूंगा, और ध्रुव तारा उसको बना दिया। तो अकाम सर्व कामवा मोक्ष काम उदार, ये कोई भी इच्छा भगवान के पास है। लेकिन अगर भगवान के पास जाते हैं और कृष्ण के पास जाते हैं, हाँ देवी देवताओं के पास नहीं, तो कहते हैं कि अगर कृष्ण के पास जाते हैं अकाम सर्व कामवा मोक्ष काम उदार ये तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुष परम, के वो जब उसके पास जाता है तो आप तीव्र भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, और भगवान फिर आपको इतना कुछ देता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जब हमारे जीवन में कुछ करने की कोशिश करते हैं तो भगवान के लिए बहुत कम करते हैं। एक्चुअली ऐसा बताते हैं कि भगवान के लिए सर्वोच्च करना चाहिए। यशोदा माता से क्या शिक्षा मिलती है कि मैं 9 लाख गायों से निकला हुआ जो बटर है, यू नो, सर्वोच्च माखन मैं कृष्ण के लिए बनाऊंगी। लेकिन कई बार हमारी ऐसी परिस्थिति होती है कि हम लोग भगवान को, इसलिए कई संत कहते हैं कि आप जब भगवान के पास जाते हो और अपना वॉलेट निकाल के कुछ दान देते हो तो भगवान ये नहीं देखते कि कितना अंदर डाला, वो देखते कि कितना वापिस रखा है इसने। कि जेब में 500 रुपए है और 1 रुपया भगवान को दे रहे हो तो 499 भगवान को दिखता है कि तुमने रखा है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जिनके पास अपार संपत्ति है, कुछ हजार भी दे दिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और किसी के पास बेचारे के पास 1 रुपया है और वही भगवान को दे देता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान उस चीज को देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इस दुनिया की मैं बात करता हूँ इन जनरल, नॉट इन पर्टिकुलर, कि कई बार हम लोग हमारे खाने के लिए गांव से देसी घी मंगाते हैं, हाँ 2000 रुपये किलो का, हाँ लेकिन भगवान को दिया बत्ती करते हैं डालडा के घी में। तो भगवान देखता नहीं है कि खुद को खाने के लिए देसी घी और मेरे को डालडा घी में घी दिए बना रहा है। भगवान को सब दिखाई देता है एक्चुअली, कोई भी उसको चीट नहीं कर सकता ना। कई बार हमारे को लगता है कि यार हम लोग प्रोग्राम करेंगे खर्चा होगा, ये करेंगे उसमें खर्चा होगा, या मतलब वॉट एवर सेंस आई एम सेइंग दैट। तो कई बार यू नो बहुत कैलकुलेटिव माइंड हम लोग रखते हैं, लेकिन भगवान का जो कैलकुलेशन है वो हमारे यू नो दिमाग से बाहर है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो इस पूरे एपिसोड के अंदर हम लोग क्या सीखते हैं, जो सीक्वेंस है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी क्वालिफिकेशन बताते हैं सुदामा का। उसका क्वालिफिकेशन क्या था, ब्राह्मण था, जितेंद्रिय, प्रसन्न आत्मा, हाँ ब्रह्मवित्तम, ये सब है। उसके बाद कंडीशन बताते हैं कि कंडीशन क्या थी सुदामा की, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था वो और उसकी पत्नी, दोनों गरीब थी। उस कंडीशन के बाद में देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन वाइफ एंड द हस्बैंड कि हे प्रभु, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आप भगवान के पास चले जाओ, जाओ कृष्ण के पास में। मैं जानती हूँ आप अयाचक हो, लेकिन प्लीज एटलीस्ट बच्चों के लिए जाओ। देन सुदामा कंटेम्पलेट्स आफ्टर द कन्वर्सेशन, ही डज कंटेम्पलेशन कि अयम ही परमो लाभ हो, कि मैं भगवान के पास जाऊंगा, मुझे सौभाग्य मिला है उसके पास जाने के लिए। हाँ, सो देर इज अ क्वालिफिकेशन, कंडीशन, कन्वर्सेशन, कंटेम्पलेशन, एंड देन देर इज ए प्रिपरेशन। हाँ, प्रिपरेशन क्या है कि कुछ तो लेके जाऊं उनके लिए, तो भीख मांग के 4 मुट्ठी पोहे लेके आ गए। उसके बाद देर इज ए कम्यूटेशन, वो जाते हैं वहां पे पूरा इतना चल के, चलने के बाद देन देर इज अ रिसेप्शन ऑफ सुदामा एट द्वारका। पहले तो उनको हकाल देते हैं, फिर बाद में कृष्ण आते हैं, और रिसेप्शन के बाद में जब कृष्ण उनको लेके जाते हैं देन देर इज अ रिकलेक्शन बिटवीन बोथ द फ्रेंड्स कि हमने जीवन में क्या क्या किया था सांदीपनि मुनि के आश्रम में और क्या हमारे साथ हुआ था। और वो रिकलेक्शन के बाद में जब सुदामा वापस जाते हैं देन देर इज अ रेसिप्रोकेशन ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड रेसिप्रोकेट्स विद हिम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द होल सीक्वेंस इन द स्टोरी एंड ऑल्सो द लेसन फ्रॉम द स्टोरी. तो लेसन क्या है कि सबसे पहले ब्राह्मण कौन होता है, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है नंबर वन. और वैष्णव जो है वो ऑब्वियसली ब्राह्मण से हायर है. उसके बाद जो है कि सुदामा जो है वो अयाचक प्रवृत्ति का है. हमको भी भगवान के पास कुछ मांगना नहीं चाहिए, यू नो, मांग के तो हम लोग हमारा नुकसान करते हैं. भगवान सब कुछ जानते हैं, वो राइट टाइम का वेट करते हैं और फिर भगवान हमको देते, तो अयाचक प्रवृत्ति का है. प्लस जैसे स्त्री जो है या यू नो हमारे पास धीरज होना चाहिए कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जावे या कुछ भी हो जावे, हमको अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए. सो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, यू नो ये चारों जो है ये कैसे इसको हम लोग यू नो समझना चाहिए. और उसके बाद में इतना होने के बाद भी व्हेन यू इवन यू अप्रोच कृष्णा, सो अहेतु की प्रतिहता, दैट्स अवर स्टैंडर्ड. अगर नहीं होता तो एटलीस्ट अकाम कर सर्व काम होगा, भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए, किसी देवी देवताओं के पास या किसी बाबा के पास नहीं जाना चाहिए हमारे को. और भगवान के पास हम लोग कुछ जाते हैं तो हमको कुछ तो गिफ्ट लेके जाना चाहिए, और अगर कुछ नहीं लेके जाता तो अपना हृदय ऑफर कर देना चाहिए भगवान को, यू नो. जो हृदय जो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम. और इसलिए भगवान इतना सिंपल चीज गीता में मांगते हैं कि कोई भिखारी भी दे सकता है. पत्रम पुष्पम भगवान के पास जब जावे, और भगवान के पास जाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि सुदामा शायद मर जाता था चलते चलते, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी लेकिन फिर भी भगवान के पास हो गया. तो हमको भी एफर्ट लेना चाहिए, दो कदम हम भगवान के लिए एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान 10 कदम बढ़ा के आएंगे. और जब हम पहुंचते हैं, और भगवान के पास ऑब्वियसली पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान जब रेसिप्रोकेशन करते हैं तब हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते. तो ये भगवान की मित्रता, इसलिए भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति. कि अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मुझसे मित्रता करो, मेरे पास आओ. अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपका भंडार ऐसे भर दूंगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यू नो क्या हुआ है. और कई लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये द्वारकाधीश इस तरह से क्यों भाग के सुदामा से लिपट रहा है, ये तो भिखारी, मतलब दरिद्र से भी दरिद्र था वो. हाँ, लेकिन उस दरिद्र को भगवान ने अपने बाहों में लिया, उसको अपने सिंहासन पर उठा के उसकी, इंडीड ऐसा भागवत में तो पूरा वर्णन है, मैं इतना डिटेल में नहीं गया, कि भगवान श्री कृष्ण उसकी आरती करते हैं. हाँ, पूरा का पूरा फुल आरती होती है, उसका अभिषेक करते हैं, उसको नहलाते हैं. हाँ, और सब रानियों को बोलते हैं कि इसका आशीर्वाद प्राप्त करो. तो भगवान इतना ऊंचा स्थान देते हैं, और इसलिए भगवान कई बार कहते हैं कि मेरा भक्त जो है उससे मैं इतना प्रेम करता हूं कि जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू मैं हाथ. कि जहां मेरा भक्त पैर रखता है मैं वहां पे अपना हाथ रख देता हूं. हाँ, कि जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू मैं हाथ, पीछे पीछे डोलू सदा मैं कभी ना छोड़ू साथ. तो भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं. तो ये हमारे को समझ में आना चाहिए कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ भगवद गीता. नंबर वन, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू श्रीला प्रभुपाद, बाय हूज मर्सी यू नो वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस नॉलेज टू अंडरस्टैंड, जिन्होंने भगवद गीता को इतना सिंप्लीफाइड वर्ड में पेश किया है. यू नो इवन ब्राह्मण की बात करते हैं, मैं ऐसे ब्राह्मणों को जानता हूँ, यू नो मैं भी जैसे ब्राह्मण कुल में वैसे पैदा हुआ हूँ, वैसे बहुत सारे जो मावा पान खाते हैं, सिगरेट पीते, तंबाकू पीते, मांस मदिरा भी लेते हैं, लेकिन धन्य है ये ब्राह्मण और ये वैष्णव जो इस्कॉन के अंदर आए हैं, जो कि यवन देश से है और यू नो पाश्चात्य देश से है, लेकिन सब कुछ उन्होंने छोड़ छाड़ के ब्राह्मणत्व का एक्चुअल जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं और दूसरों का भला कर रहे हैं. तो ये मतलब प्रभुपाद की कृपा, ये मैजिक है प्रभुपाद का, जो प्रभुपाद ने इतना करके बता दिया और आज तक संसार शायद उसको पहचान नहीं पाएगा. ऑब्वियसली थोड़ी बहुत खटपट इधर उधर होती है क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, लेकिन हमको दोष दर्शन के बदले देव दर्शन करना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरे को क्या लेना है. नो, जैसे मैं एंड करता हूँ, जस्ट टू टेल दिस वन थिंग दैट देर आर 6 or maybe 5 काइंड ऑफ यू नो दृष्टिकोण. दृष्टिकोण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव. कि एक जो वो होते हैं जो सिर्फ खराबी देखते हैं हर किसी के अंदर, उनको अच्छा ही देखने की आदत ही नहीं रहती, जैसे दुर्योधन था, हर चीज के अंदर बस खराबी. प्लीज सो हर चीज में वो खराबी देखता था. जैसे दुर्योधन अपने ऊपर किसी को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए बताते हैं कि जब वो निकलता भी था तो ऊपर छतरी नहीं रखता था, क्योंकि अपने ऊपर किसी को सहन ही नहीं कर सकता था. हर बार युधिष्ठिर इतना अच्छा था लेकिन अवगुण ही देखे उसने उसके अंदर. तो उस प्रकार के लोग होते हैं. दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं, बट दे फोकस ऑन बैड, अच्छाई को नहीं देखते, बुराई को ही देखते हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो सिर्फ अच्छाई देखते हैं, एंड दे आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस और दैट्स ओनली कृष्णा, यू नो, जो वो सब देख सकते हैं। दूसरे पांच, ये तीन हो गया। चौथे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा बुरा दोनों देखते हैं, लेकिन बुरा छोड़ देते हैं, अच्छे पे फोकस करते हैं। और एक और प्रकार के लोग होते हैं जो किसी में खाली थोड़ा सा अच्छा देखते हैं और उसको मैग्नीफाई करते हैं। उसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़ा सा खराब देखेगा किस में, जैसे जो शिवजी है, शिवजी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक खराबी कुछ देख के उसी के ऊपर कोई पॉइंट आउट करेगा, जैसे चित्रकेतु ने किया था, कह रहे कथा सुना रहा है, अपनी पत्नी को अपनी गोद में बिठा के रखा है, यू नो, उसका फॉल डाउन हो गया वहां पे। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, ऑब्वियसली वी आर नॉट इन दैट स्टैंडर्ड कि हम खाली अच्छा ही देखेंगे, ऐसा होगा नहीं। सो वी विल सी बोथ, वी विल सी गुड एंड बैड ऑल्सो, बट कॉन्सियसली विथ एफर्ट वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन गुड थिंग एंड ट्राई टू इग्नोर बैड थिंग। अच्छा बुरा सभी में है। और राधानाथ महाराज कहते हैं कि हम हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के कुत्ते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। कौन ज्यादा गुर्राएगा? जिसको हम ज्यादा फीड करेंगे। तो इसके लिए हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हम अच्छा देखें, अच्छा करने की कोशिश करें, एंड विथ सपोर्ट एंड कोऑपरेशन इफ वी एक्चुअली डू भक्ति टुगेदर, आई थिंक नथिंग लाइक दैट, यू नो, वी विल बी विक्टोरियस। सो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर टेकिंग लिटिल मोर टाइम, बट आई होप वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी। सो वी स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। सो अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई टीका है, सो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज विल हैव प्रसाद।